नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का किया जाएगा गठन। राज्य में पशुपालन विभाग की मोबाइल इकाइयों के जरिए आज से होगी कॉल सेंटर की शुरुआत। हरियाणा विधानसभा चुनावों में तीसरी बार जीत के साथ भाजपा की हैट्रिक। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन जीता। और क्रिकेट में आज भारतीय पुरुष टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगी। महिला T20 विश्व कप में भारत का सामना श्रीलंका से। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा और राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में राइजिंग राजस्थान पर्यटन प्री समिट को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार निवेश निवेशकों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा।
विकास को गति देने के लिए नई राजस्थान पर्यटन इकाई नीति भी लेकर के आ रहे हैं। इसमें निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतों का प्रावधान किया जा रहा है। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कर राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड बनाकर पर्यटन क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। हम मीटिंग कॉन्फ्रेंस एजुकेशन टूरिज्म हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम भी हम बनाने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रेप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव के लिए पर्यटन में निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है। श्री शर्मा ने कहा कि पर्यटन समिट में इस क्षेत्र में 142 निवेश प्रस्तावों के एमओयू हुए हैं। इनसे प्रदेश में लगभग 14,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे राज्य में 59,000 प्रत्यक्ष और 10 लाख से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री शर्मा ने निवेशकों से आह्वान किया कि वे राजस्थान में अधिक से अधिक संख्या में निवेश करें। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाकर पर्यटन में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में राजस्थान को नंबर 1 राज्य बनाएगी। राज्य में पशुपालन विभाग की मोबाइल इकाइयों के जरिए आज से कॉल सेंटर की शुरुआत हो रही है। पशुपालन और गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जयपुर में इसका शुभारंभ करेंगे। पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत प्रदेश में 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट के माध्यम से पशुपालकों को उनके घर पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्य में प्रत्येक 1 लाख पशुओं पर एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट काम करेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक ये यूनिट अपने तय रूट पर शिविर लगाकर पशुपालकों को अपनी सेवाएं दे रही हैं। कॉल सेंटर शुरू हो जाने से पशुपालकों को उनके दरवाजे पर ही पशु चिकित्सा सेवा मिल सकेगी। इस कॉल सेंटर का हेल्पलाइन नंबर 1962 है, जिस पर फोन कर पशुपालक इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। पार्टी राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में 90 सीटों में से भाजपा ने 48 सीटें जीती हैं, वहीं कांग्रेस 37 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर है। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। 90 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें हासिल की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को जनादेश देने के लिए राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को भी खास बताते हुए कहा कि ये विकास और सुशासन की राजनीति की जीत है। श्री मोदी ने लोगों को आश्वस्त किया कि भाजपा सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं और इसमें हुआ भारी मतदान, लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को दर्शाता है। हरियाणा में भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरियाणा की जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुशल मार्गदर्शन में भाजपा को ये विराट जीत हासिल हुई। उधर हरियाणा भाजपा प्रभारी और राजस्थान में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि ये जीत लोगों की भाजपा एनडीए सरकार में अटूट विश्वास की जीत है। हरियाणा में भाजपा की हैट्रिक पर पार्टी प्रदेश कार्यालय सहित जिला कार्यालयों में जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिनों में किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में जानकारी देने के लिए आकाशवाणी जयपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको बता रहे हैं राष्ट्र के विकास में महिलाओं की क्षमता का उपयोग करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए की गई परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM केंद्र सरकार के सबसे उल्लेखनीय प्रयासों में से एक है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं की मजबूत संस्थाएं बनाकर गरीबी कम करने को बढ़ावा देता है। इस मिशन ने 92 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों में 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को सफलतापूर्वक एकजुट किया है। लखपति दीदी योजना के तहत सरकार का उद्देश्य महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना है। लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, जो 1 लाख रुपए या उससे अधिक की सालाना घरेलू आय अर्जित करती हैं। योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है और सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के केंद्रीय बजट में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कई पहल शुरू की हैं, जिसके तहत कामकाजी महिलाओं को छात्रावास और क्रेच की सुविधा दी जाएगी। इससे महिलाओं को काम करने के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण मिलेगा। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं ज्योति पारीक।
कोटा में राष्ट्रीय दशहरा मेले के तहत रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में कल श्री राम बारात निकाली गई। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शिरकत की। गीता भवन से श्री राम रंगमंच तक के करीब 5 किलोमीटर तक के मार्ग पर राम बारात निकाली गई। इसमें घूमर नृत्य के साथ राजस्थानी संस्कृति की छटा बिखेरते हुए महिला पुरुषों का समूह बरबसी लोगों को आकर्षित कर रहा था। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में आज बांग्लादेश से भिड़ेगी। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाने वाला यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि ग्वालियर में खेले गए पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश पर 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। उधर ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत आज शाम दुबई में ग्रुप ए के अपने तीसरे मैच में श्रीलंका से भिड़ेगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य में पशुपालन विभाग की मोबाइल इकाइयों के जरिए आज से कॉल सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को जनादेश मिला है। और क्रिकेट में आज भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश से होगा। महिला T20 विश्व कप में भारत श्रीलंका से भिड़ेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।